الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آیت 97 سورہ بقرہ کی. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں من کانا عدوون جو کوئی ہوگا دشمن لجبریل جبرائیل کا فإنہ تو بے شک اس نے تو نزلہ نازل کیا ہے اسے کتاب کو یعنی کہ قرآن علی قلب کا آپ کے دل کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اوپر انہوں نے اس کتاب کو تو نازل کیا ہے بإذن اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا ہے. آگے اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے مصدق اللہ ما بین ایدیہ وہدم و بشرا للمومنین وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے جو کہ ان کے درمیان موجود ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے. تمہاری باتوں کو غلط تو نہیں کہہ رہا, تمہاری تورات کو غلط تو نہیں کہہ رہا, تمہارے نبی کو تمہارے رسول کو تمہاری جو پرانی باتیں ہیں علماء تو ان لوگوں کو برا تو نہیں کہہ رہا, غلط تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹے تھے, ایسی تو کوئی باتیں, وہ تو بلکہ تصدیق کر رہا ہے ویریفائی کر رہا ہے اسے. وہدم و بشرا للمومنین اور اس کے اندر تو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں گے اس کے اوپر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ جو کوئی ہوا دشمن جبرائیل کا تو یقیناً جبرائیل نے تو نازل کیا تھا اس قرآن کو آپ کے دل کے اوپر اللہ کے اذن سے. اور یہ جو قرآن ہے یہ تو تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس آلریڈی ہے اور یہ تو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من کانا جو کوئی بھی ہوا عدو للہ دشمن ہوا اللہ کا والملائکہ یا ہوا فرشتوں کا دشمن و رسولی ہی یا اس کے رسولوں میں سے کسی کا دشمن ہوا و جبرائیل یا جبرائیل کا دشمن ہوا و میکائیل یا میکائیل کا دشمن ہوا فإن اللہ عدو للکافرین تو سن لو اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کا دشمن ہے. جس کسی نے دشمنی کی اللہ کے ساتھ یا اس کے کسی فرشتے کے ساتھ یا اس کے کسی رسول کے ساتھ یا جبرائیل کے ساتھ یا میکائیل کے ساتھ تو بس سن لو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یہ جو دو آیات بات ہو رہی ہے ہم لوگ پہلے آیات کے اندر جو بات کر رہے تھے یہ بالکل ہی لگتا ہے کہ ایک الگ چیز کا ذکر آ گیا ہے کہ بیچ میں اچانک جبرائیل کا کون جو دشمن ہے وہ جان لے کہ جبرائیل جو ہے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتاب نازل کی تھی. پھر یہ بھی اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا کہ جس کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہماری دشمنی اللہ کے ساتھ ہے یا اس نے کہہ دیا کہ ہماری دشمنی کسی ایک فرشتے کے ساتھ ہے کسی ایک فرشتے کے ساتھ بھی یا ہماری دشمنی رسول کے ساتھ ہے یا جبرائیل کے ساتھ ہے میکائیل کے ساتھ ہے ان میں سے جس کسی کے ساتھ بھی وہ یہ بات کرے گا تو اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یہ ایگزیکٹلی جو بات ہو رہی ہے اس کا شان نزول یہ ہے, ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے جو میں روایت بتا رہا ہوں وہ مسند احمد میں سے ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہودی علماء کچھ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا اے ابو قاسم ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے, پانچ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے, اگر آپ نے ان کا صحیح طرح ہمیں جواب دے دیا تو پھر ہم آپ کو ایمان لیں گے, ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لے لیا بالکل اس طرح جس طرح کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا تھا, اس کا جا کے ذکر آئے گا آگے جا کے قرآن کے اندر کہ وہ وعدہ کیا تھا. تو پھر جب انہوں نے وعدہ کر لیا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں جب آپ جواب دے دیں گے ہمیں ان چیزوں کا صحیح سے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب تم پوچھو کیا سوال ہے تمہارے پاس. انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ نبی کی کوئی علامت بتائیں, نبی کی کوئی نشانی بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں جب وہ سوتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. نیکسٹ سوال انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کبھی بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو کبھی تو اس کی شکل ملتی ہے اس کی ماں کی سائڈ سے پیٹرنل سائڈ سے کبھی میٹرنل سائڈ سے, اسی کا وجہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب مرد اور عورت کے پانی ملتے ہیں تو ان میں سے جو ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کر لیتا ہے اس کی وجہ سے پھر اولاد اس کے اوپر جاتی ہے. بایولوجی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی میٹرک کے اندر, اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کے جینز ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں دوسرے کے اوپر وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے, لیکن اوور آل ہوتا ہے مکسچر ہی ہے اس کا, جینڈر اس میں شامل نہیں ہے. جینڈر ہمیشہ اور صرف मेल की तरफ से बनता है, बच्चा लड़का होगा लड़की होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेल के जो स्पर्म होता है वो डिसाइड करता है, उसके एंड के ऊपर होता है। ये जो हमारे यहाँ एक जाहिलियत की वजह से एक तस्वर हमेशा से रहा है कि और बच्चे जो हैं ये बेटे जो हैं वो औरतों की वजह से होते हैं, और जिसके यहाँ सिर्फ बेटियाँ होती हैं वो तो औरत ही पता नहीं क्या अजीब मनहूस औरत है, वो किसी और जगह कहीं और शादी की जाएगी ताकि मुझे बेटा मिले। तो अल्लाह ताला ने साइंटिफिकली भी ये प्रोटेक्शन रखी है औरत के लिए कि ये सब चीज़ें होती ही मेल की वजह से डिसाइड है, मेल स्पर्म्स के डिसाइड होता है कि जेंडर क्या होगा। उसके बाद उन्होंने अगला सवाल पूछा रसूल अल्लाह सल्लम से कि ये बताएं कि याकूब अलैहिस्सलाम या इसराइल अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ अपने ऊपर हराम करार की थी। कुरान में जिक्र सिर्फ इतना मिलेगा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर कुछ जो चीज़ें हराम कर ली थी वो चीज़ें फिर वापस हलाल कर दी गई थी बनी इसराइल के लिए। तो उन्होंने आगे पूछा रसूल सल्लम से आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ थी। तो रसूल सल्लम ने बताया कि उनको फलानी बीमारी थी याकूब अलैहिस्सलाम को, जिसकी वजह से उन्होंने ये समझा कि ऊँट के दूध को तो मैं इस्तेमाल करूँगा लेकिन ऊँट का गोश्त ये मैं आपसे कभी नहीं खाऊँगा। उन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर हराम करा दिया था। यहूदियों ने अलमा तायद की कि वाकई ऐसी ही बात थी। उन्होंने चौथी चीज़ पूछी बिजली की कड़क से मुतल्लिक, अगरचे ये अल्फाज जो हैं ये ज़ईफ़ हैं इसके अंदर। पाँचवीं चीज़ उन्होंने कही, चारों चीज़ें जो आपने हमें बताई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। पाँचवीं चीज़ अगर आपने हमें ठीक बता दी तो फिर हम आप पे ईमान ले आएंगे, हम बैत करेंगे आपके हाथ के ऊपर। इसके ऊपर उन्होंने सोशल में कहा ठीक है बताओ क्या पाँचवीं चीज़ क्या। उन्होंने कहा ये बताएं कि हर नबी हर रसूल के साथ कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से एक पैगंबर आता है, आपके तरफ पैगाम कौन ले के आता है। तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल। तो उन्होंने कहा जिब्राइल जो कि अजाब और जंगें जिसकी वजह से मुसलत होती हैं तो वो तो हमारा दुश्मन है। अगर आप कहते हैं कि मीकाईल है जो कि रहमत बरसाता है बारिश नाजिल होती है जिसकी वजह से, तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। ये उनका कहना था तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की थी। तो अल्लाह ताला किसे कह रहे हैं कि जो कोई ये कहेगा कि जिब्राइल के हम दुश्मन हैं या जिब्राइल हमारा दुश्मन है या बाकी भी अल्लाह ताला कह रहे हैं, जिसने फिर मुझे कह दिया कि मैं उसका दुश्मन हूँ या मेरे किसी फरिश्ते को कह दिया या किसी रसूल की इस तरह की बात की उसने या जिब्राइल या मीकाईल, तो जान रखो कि मेरी उसके साथ भी दुश्मनी है, मैं नहीं इस चीज़ को टॉलरेट करूँगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि मैं मेरे रसूल और मेरे फरिश्ते, हम तीन जो हैं वो एक ग्रुप हैं, एक पार्टी हैं, वन साइड के ऊपर हैं। तुमने अगर इनमें से किसी एक के बारे में भी कोई गलत तसव्वुर रखा, बिल्कुल इस तरह ही होगा कि एज इफ तुमने इन सब के बारे में ही तसव्वुर रखा। ये वन यूनिट की तरह, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनको स्प्रेड नहीं किया जा सकता कि हम इनको तो मान लेंगे, इनको हम नहीं मानते, इनकी तो हम तस्दीक कर लेंगे कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं लेकिन इनकी हम बात नहीं मानते। ये आपको पता है, ये हमारा अकीदा है कि रसूलों को और फरिश्तों को इन सब को मानने के बारे में बात की गई है कुरान के अंदर रिपीटेडली। ये भी हम आयात आगे जाके पढ़ेंगे, सूरह बकरा के अंदर ही आता है आयत 136 के अंदर, कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल असबात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबीयूना मिन रब्बिहिम। ए नबी सल्लम ए मुसलमानों कह दो कि हम सब ईमान लाते हैं अल्लाह पर और जो कुछ नाजिल किया अल्लाह ने हमारे ऊपर और जो कुछ नाजिल किया था अल्लाह ने इब्राहीम के ऊपर, इस्माईल के ऊपर, इसहाक के ऊपर, याकूब के ऊपर और औलाद याकूब के ऊपर, और जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया था मूसा को और ईसा को, और जो कुछ अता किया था अल्लाह ताला ने और भी नबियों को, ला नफर्रिक बैन अहद मिनहुम, हम इनमें से किसी एक में कोई भी तफरीक नहीं करते, वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम इन सब को मानते हैं, हम इन सब की बात के आगे फरमा बदार हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हम इन सब को मानते हैं तस्लीम करते हैं। इसी तरह की बात सूरह बकरा की सेकंड लास्ट आयत के अंदर भी आती है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ईमान लाए हैं ज़ाती तौर पे इस कुरान और इस दीन के ऊपर, और जो अहले ईमान है वो भी ईमान लाए हैं इन बातों के ऊपर जो कुछ नाजिल हुआ है और अपने रब के ऊपर। कुल्लुन, तमाम के तमाम, आमन बिल्लाहि, ईमान लाते हैं अल्लाह के ऊपर, वल मलाइकति, और तमाम फरिश्तों के ऊपर, व कुतुबिहि, और तमाम किताबों के ऊपर, व रुसुलिहि, और तमाम के तमाम रसूलों के ऊपर, ला नुफर्रिक बैन अहदिन मिन रुसुलि, और वो उन रसूलों में से किसी एक में कोई भी तफरीक नहीं करते। इसी तरह की बात अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत 84 के अंदर की है, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें, आ मरना हम लोग ईमान लाए, बिल्लाह अल्लाह के ऊपर, बमा उनज़िला इलैना, जो कुछ नाजिल हुआ हमारे ऊपर हम उसके ऊपर भी ईमान लाए, बमा उनज़िला अला इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल असबात, बमा ऊतिया मूसा व ईसा व नबीयून मिन रब्बिहिम। बिल्कुल उसी किस्म के अल्फाज हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। ला नफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। थर्ड टाइम देखें, एक ही बात आयत के अंदर आ रही है, और इसके अंदर यहाँ पे भी बात हो रही है, अहले ईमान की बात हो रही है कि मुसलमानों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें। अब अल्लाह ताला इसके ऑपोजिट कन्वर्स भी इसका जिक्र कर रहे हैं, सूरह निसा की आयत 150 के अंदर, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बिल्लाह अल्लाह के साथ, व रसूलिही और उसके रसूलों के साथ, व युरीदूना, और वो चाहते ये हैं, अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान में तफरीक पैदा करें, दोनों में फ़र्क करें, डिस्टिंग्विश करें दोनों को। व यकूल होना नो मिनो बाज़ हम व नक फिरो बेबाज़, कि हम तो कुछ पर तो ईमान लाते हैं और कुछ को हम रद्द करते हैं, कुछ के साथ हम कुफर करेंगे, हम कुछ को मान लेंगे। व यूरी दूना अँ यतखज़ू बैना ज़ाले का सबीला, और ये जो अल्लाह ताला ने दो ही रास्ते रखे हैं, या तो इस्लाम, इस्लाम है तो तमाम को मानना है, नहीं है तो फिर कुफर है, ये दरमियान की कुछ चीज़ निकालते हैं कि कुछ को तो मान लेंगे और कुछ को हम लोग रद्द कर देंगे, कुछ को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने चार दफ़ा कुरान के अंदर रिपीट की है, इस कदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं अपने रसूलों के अंदर, अपने फरिश्तों के अंदर किसी किस्म की कोई तोहीन को, किसी किस्म के कोई कुफर को बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुमने इन सब को मानना है। कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है अपना, फरिश्तों का और रसूलों का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी की किताब रकाक के अंदर, जिसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला काला कहते हैं, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, कि हदीस कुदसी हुई, मन आदा ली वलीयन, जिस किसी ने दुश्मनी की मेरे किसी भी वली के साथ, फकत अज़न्तुहु बिल हर्ब, तो मेरी तरफ से उस शख्स के लिए अल्लाह ने जंग है। तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात, अपने फरिश्ते, अपने रसूलों के साथ साथ इजाफी तौर पे हदीस के अंदर क्या आ गया है कि अपने जो वली हैं उनके साथ भी अल्लाह ताला कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी तोहीन की जाए, उनको रिजेक्ट किया जाए। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है कि उन्होंने तो नाजिल किया था ये दीन, ये कुरान आपके कल्ब के ऊपर बेइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के अमर से ये चीज़ उन्होंने की थी, अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी। इसके बारे में वजाहत के लिए सही बुखारी के अंदर किताब तफसीर सूरह मरियम के ऊपर जो इमाम बुखारी ने तफसीर वाली हदीसें जमा की हैं उनके अंदर ये मौजूद है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया जिब्राइल से, अल्लाह सल्लम ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल आप आने में बहुत ताखीर कर देते हैं, आप एक पैगाम से दूसरे पैगाम में बहुत लेट कर लेते हैं, बहुत ताखीर कर देते हैं, और मेरे अंदर इस चीज़ का शौक बहुत ज़्यादा है, तो आप क्यों नहीं इस तरह करते कि आप जल्दी जल्द आया करें, कम वक्फों के साथ जल्द अज जल्द आया करें आप। तो रसूल सल्लम का ये कहना था कि इसके ऊपर आयात नाजिल हो गई सूरह मरियम की, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा है वमा तनज़्ज़लो इल्ला बे अम्र रब्बिक, हम नहीं नाजिल होते मगर सवाए अपने रब के ही हुक्म से, लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना व बैना ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया, और आपका जो रब है वो किसी किस्म की कोई गलती कोताही नहीं करता। यानी कि रसूल सल्लम ने जब जिब्राइल से कहा कि आप जल्दी आया करें पैगाम लेके, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वाज़े अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि जिब्राइल आप इनको बता दें कि हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास कोई इसमें अथॉरिटी नहीं है कि मैंने कब आना है कब नहीं आना, जब अल्लाह ताला का अमर होगा, जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तब मैं आऊँगा। तो जब हुक्म है हम उसको फॉलो करते हैं सिर्फ, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ जो फॉलो कर रहे हैं वो हम अल्लाह को फॉलो कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं। वकाना रब का नसीया, और आपका रब जो है वो किसी किस्म की कोई ख़ता नहीं कर सकता। ये नसीया वही लफ्ज़ है जिसे जो नसियान से है, जिसे इंसान भी बनता है, इंसान का मतलब क्या है, ख़ताकार, जो गलती कर सकता है, जिससे भूल हो सकती है, इंसानों के अंदर ये कोताही हो सकती है, हम तो आपके रब को फॉलो करें जो आपका रब कह रहा है। सूरह तहरीम की आयत 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, वकूदुहन नास वल हिजारा, जिसको अल्लाह ताला ने तैयार कर दिया है इंसानों के लिए और पत्थरों के लिए, علیہ ملائکتوں غلاظن شدادن، اس کے اوپر بہت سخت جان، بہت ہارش قسم کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، بہت طاقتور قسم کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اس میں سے کسی ایک حکم میں بھی ذرا بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے وہ۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کہا جاتا ہے انہیں بالکل اس طرح ہی کرتے ہیں۔ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پہ بھی فرشتے مقرر ہیں، جب وہ عذاب دے رہے ہوں گے تو لوگ آگے سے تڑپیں گے، ان کے آگے ان سے پانی مانگیں گے یا ان سے رحم کی اپیل کریں گے، وہ جیسا کہا جائے گا انہیں وہ بالکل ویسا ہی کریں گے، اپنے رب کے بالکل اسی طرح ہی اوبے کریں گے جس طرح کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ مادہ نہیں ہے کہ ان کو رحم آ جائے گا یا وہ خود بھی تھک جائیں گے، ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آ جائے گی کہ چلو بس بہت ہو گیا، ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی۔ سمجھنے کے لیے میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے فلم دیکھی بھی ٹرمینیٹر، تو جو ٹرمینیٹر والا رول ہے نا، وہ سمجھ لیں گے وہی رول فرشتوں کا ہوتا ہے کہ وہ بالکل روبوٹ کی طرح، مشین کی طرح فیلنگ لیس ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی تھکنے کا عنصر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایموشنز نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خوشی کا پہلو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اس چیز کا پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے بس اس کو ایز اٹ از فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ وہ تو جبرائیل نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارے حکم سے کیا ہے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جبرائیل ہی کے لیے اللہ تعالیٰ دو لفظ اور قرآن میں استعمال کرتے ہیں، ایک روح الامین، امانت دار روح فرشتہ یعنی کہ، اور ایک اور ہے روح القدس۔ قدس کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے آپ اس کو یاد کر لیں، ہم مقدس لفظ استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر، وہی لفظ ہے مقدس فرشتہ، آنریبل فرشتہ، آنریبل اینجل۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے لیے، اپنے جبرائیل پیغمبر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بھی استعمال کیے ہیں، امانت دار، کوئی خیانت نہیں کرتے، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ایز اٹ از ڈلیور ہوگا، اس کے اندر کوئی اپنی ایڈیشن نہیں ہو رہی، کوئی سبٹریکشن نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے وہ کوئی چیز بھول جائیں گے، کوئی بات بتانا بھول گئے یا الفاظ کچھ تھے غلطی سے کچھ اور بتا دیے گئے، جیسا ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک چیز کہلاتی ہے چائنیز وسپر، وہ کیا گیم کیا ہوتی ہے کہ پہلے بندے کو ایک جملہ آپ بتائیں، ایک کہانی سنائیں اسے، پھر وہ اگلے بندے کو سنائے وہی کہانی، پھر اگلے کو سنائے سنائے سنائے، جو اینڈ میں آخر میں جو بات بنتی ہے وہ سنتے ہیں، جب تو تمہیں کیا پتہ لگا ہے۔ وہ تو وہ ہر بندہ اپنی طرف سے جو غلطیاں بھول چوک ہوتی رہتی ہے اپنے لفظ ایڈ کر کر کے اینڈ میں پتہ نہیں بات کا کیا سے کیا بن چکا ہوتا ہے، چائنیز وسپر جو گیم ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوئی کوتاہی فرشتوں سے نہیں ہو سکتی، وہ کبھی اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، قرآن کے اندر آپ کو دو جگہ میں نے بتا دی ہیں کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، ہم اپنی مرضی کوئی نہیں، ہمارا کوئی اس میں دخل عمل دخل نہیں ہے کہ ہم اپنی چوائس کچھ بتا سکیں کہ میں یوں کرنا چاہ رہا ہوں یوں نہیں کرنا چاہ رہا، جیسے کہا جاتا ہے بالکل وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل کیوں آ رہے ہیں آپ کے پاس، میکائیل کیوں نہیں آ رہے ہیں، ہمیں تو میکائیل پسند ہے، ہمیں جبرائیل نہیں پسند، وہ تو ہمارے انمی ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ جہاں تک بات ہے چننے کی کہ کیوں جبرائیل نے کیوں آ کے پیغام دیا یہ، تو اس کے اندر بھی یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ اگر تنقید ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تنقید ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت 75 کے اندر، اللہ یستفی من الملائکہ و رسل ومن الناس، اللہ تعالیٰ تو چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے۔ نبی اور رسول بننا بھی کسی انسان کی چوائس میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کو بہت نیکی کرتا رہے، بہت اچھے عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو وہ نبوت کا مقام پا سکتا تھا۔ اب تو خیر نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن پہلے بھی جب نبی آتے تھے اور وحی کے دروازے کھلے ہوئے تھے، تو انسان یہ کسبی چیز نہیں ہے، آپ کما نہیں سکتے اس چیز کو، آپ ارن نہیں کر سکتے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے تھے چن لیتے تھے، انسانوں میں سے بھی رسول اور فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول۔ اور جیسا نے بتا دیا کہ اب ان میں سے اگر کسی کو ڈینائی کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کرنے والی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوز کیا تھا۔ تو یہ جو انہوں نے آخری پانچواں سوال پوچھ کے بہانہ مار دیا کہ آپ ان کے اوپر وہ آپ وہی لا رہے ہیں، ہم دنیا آپ کے بات مانتے ہو، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجوہات تین بیان کی گئی ہیں۔ جبرائیل کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ہمیشہ عذاب اور تکلیف لاتے ہیں۔ نمبر ٹو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تصور بنا لیا اپنا کہ جبرائیل کو چاہیے تھا کہ وہی اگر اتارنی تھی تو یہ بنی اسرائیل میں سے کسی پہ اتارتے، یہ جبرائیل نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہی آخری کتاب اتاری ہے، جبرائیل آ کے بےمانی کر رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کر دیا کہ جبرائیل اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی اتنی جو غلطیاں قرآن کے اندر مینشن ہوئی ہوئی ہیں کہ تم یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے، وہ اس کو بھی جبرائیل کے اوپر ڈال رہے تھے کہ جبرائیل جو ہے نا کہ انہوں نے یہ اصل میں یہ ایسے آ کے الٹی سیدھی خبریں ہمیں سارے کے سارا ہمارا وہ بدنامی کرا رہے ہیں، ہمارے بارے میں ساری باتیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں، ہماری عزت کیا رہی ہے بھائی؟ یہ جبرائیل کا قصور ہے، یہ انہوں نے یہ سارا الزام جبرائیل کے اوپر لگایا تھا. اچھا، اس کے بارے میں اب اگر ہم اس کو ذرا تسلی کے ساتھ، یہ جو ڈسٹارشن ہوئی ہے عقائد کے اندر ان کو اگر ہم انالائز کریں تو بائبل کے اندر اور تورات کے اندر، جیسا میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ بائبل جو ہے وہ کلیکشن ہے تورات کی بھی، اس کے اندر پرانے نبی جو تھے ان کے بھی صحیفے موجود ہیں، اس کے اندر زبور بھی موجود ہے جسے بک آف سامس بولتے ہیں جو داؤد علیہ السلام پہ آئی تھی، اور لوگوں کے بھی، اور اس کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے گاسپلز لکھی تھیں، یہ سب چیزیں ملا کے بنتی ہیں بائبل، انجیل بنتی ہے. بائبل کے اندر جبرائیل کے درمیان میں اور میکائیل کے درمیان میں کوئی تقسیم نہیں کی گئی کہ کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میکائیل کے بارے میں کچھ واقعات اس طرح کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک جگہ کے اوپر مینشن ہوا ہے کہ یہ پرنس آف اسرائیل کا ٹائٹل دیا ہوا ہے انہیں، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ فلانی جو چیز ہوئی تھی ایک آسمانوں کے اندر ایک شیاطین اور فرشتوں کی جنگ ہوئی تھی، اس کو لیڈ کیا تھا میکائیل نے، ادر وائز بائبل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیوز کے اندر یا جوڈزم کے اندر ایک اور بک ہے جس کا نام ہے تالمود. تالمود جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو رابائز تھے، جو ان کے علماء ہوتے تھے، جیوز کے جو علماء ہوتے تھے جن کو رابائز بولتے ہیں، ان کی ٹیچنگز، ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے فتوے، ان سب کی کمپائلیشنز ہیں یہ. اور کیونکہ یہ ریلیجن بہت پرانا ہے، 4000 سال سے زیادہ پرانا مذہب ہے یہ، تو اس لیے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. جو تالمود ان کی عراق کے اندر بیبلونیا کے اندر ہوئی تھی، جس کا نام ہے تالمود بلوی، یا انگلش میں اس کا نام ہے بیبلونین تالمود، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کی، جو بنی اسرائیل جو دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ آ کے دعائیں جمع کرتے ہیں اور جا کے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ جا کے پہنچاتے ہیں، یعنی کہ دعا کو پہنچانے والے یہ فرشتے ہیں. پھر اسی طرح ہی ان کے ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو بعد کے، شروع میں نہیں ہے لیکن بعد کے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے اندر یہ باتیں ایڈ ہو گئی ہیں کہ میکائیل جو ہیں، بائی دا وے میکائیل کے لیے جو انگلش میں ورڈ ہوتا ہے وہ مائیکل ہے، مائیکل جیکسن تو پتہ ہی ہے نا سب کو، ٹھیک ہے. اور جو جبرائیل ہے ان کے لیے گیبریل کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میکائیل ہیں وہ اینجل آف مرسی ہیں، رحمت کا فرشتہ ہیں یہ، اور جو جبرائیل ہیں وہ ہیں عدل کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو جہاں کہیں پر بھی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو وہ پھر انصاف کے لیے یہ آتے ہیں، اور جو قوموں پہ عذاب آتا رہنا بنیادی طور پہ وہ جبرائیل آ کے عذاب دیتے رہے ہیں. تو یہ عذاب کے فرشتے ہیں، یہ بیسیکلی انجل آف جسٹس، لیکن جسٹس قائم کرنے کے لیے یہ پھر عذاب نازل کرتے ہیں. جو میکائیل ہیں وہ رحمت کے فرشتے ہیں. جو ہمارے ہاں بھی جو تصورات چلے آ رہے ہیں، اور تو مجھے کہیں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی واضح کلیئر کٹ ایسی کوئی بات ملی تو نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ میکائیل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے خزانوں کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، بارش نازل کرنا اور یہ چیزیں، تو وہ اگین باتیں رحمت والی چیزیں ہو گئیں. جوڈیزم کے اندر ایک اور ٹیچنگز ہیں ان کی جو کافی ڈیوینٹ قسم کی ہیں، اس کا نام ہے قبالہ. قبالہ کے اندر انہوں نے تعویذ بنائے ہوئے ہیں، ایمولیٹس بنائے ہوئے ہیں جو مختلف فرشتوں کے ناموں کے اوپر ہیں. کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس کے نام کا تعویذ لے لیا جائے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی اس نام کا تعویذ لے لیا جائے. اسی طرح ہی اس کے اندر موجود ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ آلدو انہی کتابوں کے اندر ان کے رابائز نے اس چیز کی تنقید بھی کی ہے کہ یہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، ان کو پکارنا نہیں ہے، ان سے مانگنا کچھ نہیں ہے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جس طرح عقیدے کا بگاڑ ہوتا رہتا ہے، اس نے عقیدے کا بگاڑ اتنا ہوتا رہا کہ انہوں نے میکائیل کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا لیا اور ان کو سینٹ کا درجہ دے دیا. آپ سب لوگوں نے یہ لفظ تو سنا ہوگا، سینٹ مائیکل ایک شرٹ کا برانڈ بھی ہے. انہوں نے سینٹ کا درجہ دیا ہوا ہے میکائیل کو. اور جس طرح ہمارے ہاں جب عقیدے کے بگاڑ آئے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ولی تھے، ہم نے ان لوگوں کے عرس منانے شروع کر لیے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا کہ میکائیل کے نام پہ एक उनका उसके हिसाब से हम फेस्टिवल कहेंगे, लेकिन इन्होंने जो मनाना शुरू किया उसका नाम क्या है, माइकलमस। जिस तरह क्रिसमस है ना, क्रिसमस किस तरह लिखते हैं, क्राइस्ट लिखे आगे एम एस लिख देते हैं, इस तरह माइकल लिखे आगे एम एस लगा देते हैं। तो माइकलमस के 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये हुआ है पुरानी बात, ये 4th सेंचुरी के अंदर शुरू किया था उन्होंने, ईसा अलैहिस्सलाम के, आप समझ लें कि 300-400 साल बाद। लेकिन ये उन्होंने भी उसके नाम, उनके नाम का इन्होंने एक त्यौहार बनाना शुरू कर दिया है माइकल मस के नाम से। 29 सितंबर को ये मनाया जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात हैं। अच्छा, तो फरिश्ते जो हैं, ये हमारा अकीदा है, हमें अल्लाह ताला ने बताया है कि फरिश्तों को अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर उसका मतलब ये है कि आप ईमान से खाली हैं। कोई बंदा अगर ये कह दे ना मैं फरिश्तों को नहीं मानता, वो फिर मुसलमान नहीं है। 6 बुनियादी चीज़ें जो हैं हमारी इस्लाम के अंदर, कि अल्लाह को मानना है हमने, अल्लाह की किताबों को, उसके रसूलों को और उसके नबी को मानना है, फरिश्तों को मानना है, हमने जन्नत जहन्नम को मानना है, क़यामत को मानना है और हमने तकदीर को मानना है। ये अगर आप करें ना, इनको पॉइंट डाउन करें, तो ये 6 बुनियादी बातें बनती हैं। बाद से बादल मौत, जिसमें जन्नत जहन्नम का तसव्वुर भी आ जाता है, तकदीर, फरिश्ते, रसूल, किताबें और अल्लाह ताला की ज़ात। अगर इनमें कोई तब्दीली करता है तो वो इस्लाम से फारिग है। जिस तरह कादियानी अहमदियों ने किया कि इसके अंदर क्या हो गया कि उन्होंने नबूवत का जो तसव्वुर है कि रसूल सल्लम आखिरी नबी थे, उसके अंदर जब उन्होंने गलती कर दी कि नहीं ये एक और नबी भी आ गए हैं, तो फिर वो इस्लाम के दायरे से आउट हो गए, निकल गए। लेकिन इससे हट के अगर आपकी नमाज पढ़ने का स्टाइल कोई और है, किसी और के नमाज पढ़ने का स्टाइल कोई और है, तो ये काफिर नहीं हो गए, इस्लाम के दायरे के अंदर ही है। इन 6 बुनियादी चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम फरिश्तों में से किसी एक का इनकार कर देंगे तो वो हमें हमारा इस्लाम नलीफाई करने वाली बात हो जाएगी है। और ये भी हमें बताया गया है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के ऊपर मुकर्रर किए गए हैं। जिस तरह अभी आयत के अंदर बता दें, सूरह तहरीम के अंदर, अजाब के कुछ फरिश्ते होंगे, कुछ रहमत के फरिश्ते होते हैं, कुछ हिफाजत के फरिश्ते होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो शख्स आयत कुर्सी पढ़ता है तो फिर एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो उसकी हिफाजत करता है। इसी तरह ही बता दिया गया कि जो फरिश्ते मिकाइल के मैंने जिक्र कर दिया कि हमारे इस्लामिक ट्रेडिशंस में जिक्र क्या मिलता है कि ये रिस्क के ख़जानों के ऊपर और इनको बारिश के ऊपर मुकर्रर किया है। रसूल सल्लम के ऊपर जब ताइफ वाला वाक़या हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि वो एक फरिश्ता आया था जो कि जिब्राइल नहीं थे, उसने क्या कहा था कि मलकुल जबल हूँ मैं, इन पहाड़ों के ऊपर मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं इस दो पहाड़ियों को टकरा के ताइफ की वादी है उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमें पता है कि इस तरह ही है। फिर हमें रसूल सल्लम ने बताया हुआ है कि कुछ फरिश्ते होते हैं जो अमाल इंसानों के जमा करके ऊपर पहुंचाते हैं अल्लाह ताला के हाँ दिन के वक्त असर के बाद, और कुछ होते हैं जो फिर सुबह के बाद जो पूरी रात ड्यूटी देते हैं और अमाल जाके पहुंचाते हैं ऊपर, अल्लाह ताला के पास जाके डिलीवर करते हैं कि ये अमाल इस शख्स ने किए हैं। आपको इस तरह ये भी पता, सूरह कदर के अंदर जिक्र आया हुआ है कि इस रात फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील भी उतरते हैं इस रात के अंदर, अल्लाह ताला का हुक्म लेके और फिर अल्लाह ताला के उन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल भी करते हैं। तो ये तमाम कामों के ऊपर अल्लाह ताला ने अपॉइंट किए हुए हैं। आपको हदीस भी बताई थी सही मुस्लिम की कि जिस जगह के ऊपर अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है उस महफिल में खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, उस महफिल को रहमत के फरिश्ते ढांप लेते हैं, एक के ऊपर दूसरा पर रखता रहता है यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान का पूरा फासला जो है वो अपॉइंट हो जाता है, ताकि दूर से कि नज़र आ जाए कि ये यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला की किताब का जिक्र हो रहा है। वो हदीस में आपको तफसील में बताई थी, तो मैं सिर्फ मफहूम सा बता रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे अकीदे से ताल्लुक है, क्योंकि रसूल सल्लम ने हमें बातें बता दी हैं बारे, इनको मानना, इन तमाम बातों को मानना ये ईमान है। लेकिन इसी के अंदर ज़रा सी ज्यादती अगर ये कर दी कि ये समझ लिया कि इन में से किसी एक फरिश्ते के पास कोई अथॉरिटी भी है, यहाँ पे वो ईमान गंदा हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा शिर्क के अंदर। जिस लम्हे ये तसव्वुर आ गया कि इनके पास कोई अथॉरिटी भी है, साल के तौर पे मैं ये तसव्वुर करना शुरू करूँ कि फरिश्ते हैं जो कि आगे रिपोर्ट करते हैं अल्लाह ताला को, जाके अपॉइंट करते हैं, या ये मेरे पास भी ऐसा दो फरिश्ते मौजूद हैं, एक मेरे बाद अमाल लिख रहा होगा और एक नेक अमाल लिख रहा होगा, या हम ये समझें कि यार अगर हम लोग बजाय कि अल्लाह को पुकार दें कि हम इन फरिश्तों को क्यों नहीं पुकारते, ये अच्छी अच्छी रिपोर्टें करें जाके, हमारी अच्छी अच्छी खबरें जाके लेके दें, या अगर कोई फरिश्ता कोई है जो तैनात हुआ हुआ है रिस्क के ऊपर तो मैं उसको क्यों नहीं पुकारता डायरेक्ट, मैं अल्लाह ताला को पुकारने के बजाय अगर मैं उसको पुकारना शुरू हो जाऊँ, या उनके नाम के तावीज़ जिसों के नामों के तावीज़ बनाए होते हैं उन लोगों ने, कि ये हफाजत का फरिश्ता है, उसका तावीज़ ले लिया, उसके नाम के कलमात होंगे, उसके उसके नाम पे दुआएं होंगी। जो उनकी मॉर्निंग प्रेयर होती है और जो उनकी बेड टाइम प्रेयर होती है क्रिश्चियंस की, वो आप इसे गूगल पे सर्च करके देख लें, उनके अंदर भी ये एंजल्स का जिक्र करते हैं। वो गलती कहाँ पे, मानना फर्ज है, नहीं माना तो कुफर है, लेकिन जो मानना है उससे बढ़ा के अगर मान लिया, ये समझ लिया कि इनके पास कोई अथॉरिटी भी रखते हैं ये, या और हम इनको पुकार सकते हैं, हम इनसे भी दुआ के लिए कह सकते हैं, यहाँ पे वो तौहीद जो थी वो गंदी पड़ गई और वो शिर्क में मुलव्वस हो गई। अगर आप बहुत गौर से देखें तो दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं जिनके अंदर गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, उन तमाम मज़ाहिब के अंदर ये है कि हमेशा एक बिग गॉड का कॉन्सेप्ट है। रोमन्स के अंदर और ग्रीक्स के अंदर हमेशा एक गॉड को लिखा जाता था कैपिटल जी से, वो बिग गॉड है, लेकिन बाकी छोटे जी से लिखे जाने वाले बेशुमार गॉड थे, गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ वेल्थ, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, मुख्तलिफ नाम रखे हुए, ये वीनस है, ये जुपिटर है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। वो क्या थे? बुनियादी तौर पर यही चीज़ थी जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये रहमत का फरिश्ता है, ये फलानी चीज़ का फरिश्ता है, ये फलानी चीज़ का फरिश्ता है। उन्होंने उन्हीं के ही बिगाड़ के उनको तस्वुर ये ले आया कि ये इख्तियार भी रखते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने रहमत के ऊपर या रिस्क के ऊपर मुकर्रर किया हुआ है, वो उसको उन्होंने बढ़ा दिया कि इसके मतलब ये है कि इसके पास इख्तियार भी है कि ये जिस तरह मर्जी चाहे इसको वेल्थ दे दें। तो अगर हम उसको पुकारें, उससे हम खुश करें, तो वो हमें अता करना शुरू हो जाएगा। जो रोमन और ग्रीस के अंदर यही तस्वुर ख़राब हुआ था, अरब के अंदर भी यही तस्वुर ख़राब हुआ था कि अल्लाह को वो मानते थे। कुरान के अंदर मौजूद है कि आप इनसे पूछें बारिश कौन बरसाता है, इसको कौन पैदा करता है, ये कौन करता है, वो अमल कौन करता है, हर एक का जवाब देंगे अल्लाह। तो जब ये जवाब ही दे रहे हैं अल्लाह ताला को, तो फिर ये तुम ये चीज़ों को क्यों पुकारते हो, ये लात मजाद इनको क्यों पुकारते हो, उज्जा इनको क्यों पुकारते हो? और वो बुनियादी तौर पर क्या थे? वो उन्होंने क्या तसव्वुर रखा हुआ था कि ये फरिश्ते या खुदा की बेटी हैं। अगेन फरिश्तों का तसव्वुर उन्होंने डिस्टॉर्ट किया था, ख़राब जो हुआ था तसव्वुर वो फरिश्तों से ही हुआ था। फरिश्ते ज़रूर मौजूद थे, क्योंकि ये कौम कौन थी जो मक्का में आबाद थी? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबाद की हुई कौम थी है, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम और आगे ज़ाहिर बात है वो नबी रसूल थे, उन्होंने जो कौम को बातें बताई थी वही चली आ रही थी बातें इस कौम के अंदर, इन्होंने वही तसव्वुर लिया। लेकिन जनरेशन अपॉन जनरेशन वो इतना डिस्टॉर्ट हुआ कि वो फरिश्तों को उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया और उनके बुत बनाने शुरू कर दिया और उनके स्टैचूज बना लिए। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अगर आप उसको देखें तो उन्होंने जितने भी एंजल्स हैं उनके स्टैचूज बनाए हुए। एक 2009 के अंदर मूवी आई थी, एक नॉवल के ऊपर फिक्टिशियस सी मूवी, एंजल्स एंड डीमंस, उनके अंदर आप देखें उन्होंने वेटिकन को, अगर आपको ये माइंड के अंदर है ना कि ये चर्च किस तरह काम करती है, पोप क्या होता है, वेटिकन चर्च के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, तो उस मूवी को देखें एंजल्स एंड डीमंस, तो उसके अंदर आपको इवन बेशुमार बुत भी नजर आएंगे ये एंजल्स के जो बने हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो बुत बनाए हुए हैं। इंडिया के अंदर भी यही तसव्वुर जो था बिगड़ा था, क्योंकि वो एक तो महादेव एक मानते हैं, वो एक बड़ा भगवान बस एक ही है, बाकी जो छोटे छोटे जो हैं वो सिर्फ देवी और देवता हैं, छोटे 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 गॉड्स, वो भी यही तसव्वुर है। अपने जो फौत हुए हुए नेक बड़े लोग थे उनको, वो नूह अलैहिस्सलाम वाला मैंने आपको वाकया बताया था कि किस तरह नूह अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उस कौम में शिर्क की इब्तिदा किस तरह हुई थी। मैंने ये भी बताया था कि रसूल सल्लम के आने से पहले एक शख्स जो था अमर बिन लुहई, वो किस तरह उस शख्स ने शिर्क का रास्ता खोला था कि वो बुत बनाने शुरू कर दिए थे, उन लोगों ने बुत लेके आए थे और अपने नेक लोगों के बुत बनाने शुरू कर दिए थे और उनकी फिर प्रस्तिश करना शुरू हो गए थे। प्रस्तिश भी किस तरह कि वो समझते थे कि ये कुछ बेनिफिट दे सकेंगे हमें। तो ये एक ही किस्म की गुमराहियाँ हैं जो शैतान ने ओवर द ईयर्स मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के अंदर, एक ज़मानों के अंदर एक ही तरह की गुमराहियाँ रखी हुई हैं, तकसीम रखी हुई हैं उन्होंने। आखिर के अंदर थोड़ी सी मैं वजाहत ये कर दूँ कि वो जो जिक्र आया था अभी मैंने हदीस भी आपको पढ़ के बताया कि अल्लाह ताला के जो औलिया हैं, अगर किसी ने मेरे वली में से किसी एक के साथ भी दुश्मनी की तो मेरी तरफ से उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ये रसूल सल्लम की हदीस है। सूरह यूनस की आयत 62-63 के अंदर भी अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये आगाह हो जाओ कि जो अल्लाह के जो वली हैं, औलिया जो हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर ना तो कोई खौफ होगा ना ही उनके ऊपर कोई गम होगा। ये अल्फाज कुरान के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हम पढ़ भी चुके हैं जो अभी सूरह बकरा के जो चौथा रुकू ख़त्म हुआ था जहाँ पे, तो वो आयत क्या थी जब अल्लाह ताला ने कहा था कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास वक्तन फवक्तन हदायत आती रहेगी, जो उस हदायत की पैरवी करेगा उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। हदायत की पैरवी करने से भी वही रिजल्ट है जो यहाँ पे एक ही बात जमा कर रहे हैं अल्लाह ताला। इससे अगली आयत क्या है जिसके अंदर अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वली होता कौन है। नाम तो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन वली है कौन, उसके बारे में अल्लाह ताला 62 आयत के अंदर ये बात की थी। 63 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं, छोटी सी इतनी सी आयत है, अल्लज़ीना वो लोग, आमनू जो कि ईमान ले आए मेरे ऊपर और इन तमाम बातों के ऊपर, वकानू यत्तकून और वो मुत्तकी ठहरे जिन्होंने तकवा अख्तियार किया। बस दो क्वालिटीज़ का जिक्र हो रहा है, जो ईमान ले आए थे मोमिन बने और उन्होंने तकवा अख्तियार किया। ये दो क्वालिटीज़ जब जमा हो जाएंगी तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरे वली होंगे, ये मेरे औलिया होंगे। औलिया वली की जमा होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है इसके पीछे। बस ये दो चीज़ें हैं, जिसने ये दो चीज़ें कर ली वो अल्लाह ताला का दोस्त है, अल्लाह ताला के दीन के रास्ते के ऊपर है। और इसके ऊपर अगर कोई तकलीफ आएगी या कोई इससे दुश्मनी रखेगा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो इस तरह के जिस तरह उसने मेरे साथ दुश्मनी की थी। अब अगली बात ये आ गई कि अच्छा जी कौन वली है या कौन वली नहीं है, जरा इस बहस को भी हल करें। तो सीधी सी बात यह है कि ये वली किसका है, ये किसके वली की हम बात करें, किसके दोस्त की बात करें, अल्लाह के दोस्त की बात कर रहे हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा कौन अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ही डिसाइड करेंगे। मैं और आप हम कौन होते हैं किसी के बारे में ये फतवा लगाना कि ये वली अल्लाह है ये वली अल्लाह नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दोस्त नहीं है, इसका अख्तियार किसके पास है, मेरे पास इख्तियार है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये मेरा दोस्त है ये मेरा दोस्त नहीं है, या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये नहीं है, वो मेरा इख्तियार है, मेरी मर्जी, मैं जिसको अपना दोस्त रखूँ जिसको ना रखूँ। सिमिलरली अल्लाह ताला का एब्सोल्यूट इख्तियार है। हम तो अपनी बात सिर्फ समझाने के लिए बताते हैं, वरना हमारी अथॉरिटीज़ हमारी हर चीज़ रिलेटिव है। अल्लाह ताला का एब्सोल्यूट इख्तियार है, वो जिसको पसंद कर ले अपने लिए और जिसको वो ना करे पसंद। यहाँ पे बज़ाहिर ये दो क्वालिटीज़ जो हैं, बज़ाहिर हम एक समझते रहे एक बंदे को कि यार ये देखो मैं इसको खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ किस कदर नेक बंदा है, किस कदर तकवा है इसके अंदर, क्या पता उसकी नीयत ख़राब हो बंदे की, उस बंदे की नीयत के अंदर रियाकारी हो, शो ऑफ हो उस बंदे के अंदर, या उस बंदे के अंदर कोई और हो गुरूर तकब्बर भी हो उसके दिल के अंदर बैठा हुआ हो। तो पूरी दुनिया हम लोग ये समझते रहे कि यार ये बंदा जो है ना हमने भी अपनी आंखों से देखा है तो बहुत नेक बंदा है, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो बिल्कुल रिजेक्टेड है। और ये भी हो सकता है कि एक बंदा जिसकी तरफ हम लोगों ने कभी गौर से देखा भी नहीं कि यार ये बंदा भी कोई इसकी कोई वर्थ है कोई वैल्यू है कि नहीं है, और क्या पता अल्लाह ताला के नज़दीक वो क्या दर्जा पा ले। एक हदीस के मफहूम के अंदर है कि अल्लाह ताला के बंदों में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो बात करें तो कोई लोग उनकी बात सुनना ना चाहें, अगर वो कहीं रिश्ता मांगे तो कहीं उसको रिश्ता ना देना चाहे उस बंदे को। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे बंदों की ये वक़्त है कि अगर वो भूले से भी कोई कसम खा लें और उसको पूरा ना कर पा रहे हों तो अल्लाह ताला हालात बदल देगा कि उनकी कसम झूठी ना पड़ जाए। तो ऐसे भी लोग अल्लाह ताला के होंगे। वाज़ह बात क्या हो रही है कि तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग तो उनकी ना बात सुनना चाहते हो ना उनसे मिलना चाहते हो ना उनसे रिश्तेदारी तय करना चाहते हो अपनी कोई, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ उनका ये मुकाम है। तो हिडन है वो हम सबसे, छुपे हुए खजानों की तरह वो लोग होंगे, छुपे हुए हीरों की तरह वो लोग होंगे, हम लोग नहीं जानते। और क्या पता जिसको हम पूरी ज़िंदगी हीरा समझते होंगे तो इतना चमकता है ये तो ऐसा है फैसा है फलाना है ये है, वो बंदा जो है वो पता लगे वो तो हीरा ही निकली था अंदर से, सिर्फ कोटिंग हुई हुई थी ऊपर से, ये ज़ाहरी ग्लिटरिंग थी अंदर से कुछ भी नहीं था। तो इस बहस में हमें पढ़ने की सिर से ज़रूरत ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। जितने नेक लोग थे अल्लाह ताला के, अगर हमें उनसे कोई बेनिफिट मिल सकता है तो वो ये है कि आप पढ़ के देखें कि उनकी लाइफ थी क्या, वो किस तरह के अमल करते थे, आप उस तरह के अमल कर लें। जिनके ऊपर हम बहस करते हैं जो असल में नेक लोग थे, आगे आने वाली नस्लें थी वो तो सिर्फ इनकैश कर रही थी उनके उर्स पर नाम बनू के और इनकैश कर रही थी, जो असल नेक लोग थे वो सब के सब आपको अल्लाह ताला के मुत्तकी दीनदार ईमानदार लोग मिलेंगे आपको। वो सब के सब दरवेश किस्म के लोग थे, उन्होंने कोई मालो दौलत जमा नहीं किया था, उन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे, लोगों के खैर ख्वाह थे। इजाफी तौर पे हदीस के अंदर ये अल्फाज भी आते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू दाऊद की हदीस है और सही हदीस है, कि रसूलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला के वो नेक लोग जो एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की किताब की वजह से अल्लाह ताला की वजह से एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का जिक्र किया। और उसके बाद यही आयत पढ़ी जो मैंने आयत अभी पढ़ी है कि जो अल्लाह के जो वली होंगे उनके लिए कोई खौफ नहीं है, उनके लिए कोई गम करने वाली चीज़ नहीं है, खौफ ना फ्यूचर की किसी चीज़ के ऊपर कि पता नहीं मेरे साथ आगे क्या मामला होना है, और ना ही गम पुरानी बातों के ऊपर, रिग्रेट पुरानी बातों के ऊपर, डिप्रेशन कि पता नहीं मैं क्या क्या अमल करता आया था और मैंने क्या क्या हरकत की थी मैंने। तो जो गलतियां कोताहियां हुई थी अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं वो भी माफ़ कर दूंगा। ये दो चीज़ें इजाफी तौर पर आपको बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एडिशनल चीज़ बताई है कि जो लोगों से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला बस ये चाह रहे हैं। तो आप जितने भी वलीउल्लाह जिनके ऊपर झगड़ा कर रहे होते हैं उनके अगर आप लाइफ देखें उनके अंदर ये क्वालिटी भी थी, झगड़ा करना छोड़े उनके ऊपर, अगर अपनाना है तो सीरत अपनाएं। और इन सब दर्जों में सबसे टॉप का दर्जा रसूल अल्लाह सल्लम का दर्जा है, वो अकेले ही काफ़ी हैं। कामिल इंसानियत का जो कामिल मुकाम हो सकता है कि एक इंसान किस बुलंदी को पहुंच सकता है, वो रसूल अल्लाह सल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है, बस वो हमारे लिए अकेले ही काफ़ी हैं। अगली आयत वलकद अनज़लना इलैक आयातिम बय्यिनात, और यकीनन नाजिल किया है हमने आपके ऊपर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वाज़े किस्म की आयात, इनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये सिर्फ बनी इसराइल यहूदी हैं जो उल्टे सीधे बहाने मार के कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक फस क्रिएट कर रहे हैं, एक इशू बना रहे हैं आउट ऑफ नथिंग। अदरवाइज हमने जो आपके ऊपर नाजिल किया है वो बिल्कुल वाज़े है। वमा यकफुरू बिहा इल्लल फासिकून, और इनका इनकार नहीं करते, इनसे इनकार नहीं करते, इनका कुफर नहीं करते सिवाय सिर्फ वही लोग जो फासिक हैं। जो फासिक होंगे, हद से बड़े हुए होंगे, वो होंगे जो बात नहीं मानेंगे, बाकी सब मानेंगे, जो अहले ईमान है वो मानेंगे। और अगर इनके ये एतराज़ात, बनी इसराइल के ये एतराज़ात, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जवाब में कह रहे हैं अवकुल्लमा आहदू आहदन, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब कभी भी इन्होंने कोई भी अहद किया था, नबज़हू फरीकम मिनहुम, तो इनमें से एक गिरोह ने क्या किया कि उस अहद को अपने पीछे डाल दिया, परे फेंक दिया, परवाही नहीं की कि मैंने अहद क्या किया था अल्लाह के साथ। बल अक्सर हम ला युमिनून, बल्कि हकीकत तो यह है कि इनमें से अक्सरियत जो है वो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। आप सल्लम के ऊपर जो एतराज़ात थे और जो जिब्राइल वाली बात और मिकाइल वाली बात जो बताई अभी मैंने आपको, इसके बाद अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ए नबी सल्लम आप बिल्कुल इस बारे में कन्फ्यूज ना रहें, मुसलमानों इस बारे में कोई सेकेंड थाट ना लाओ, जो कुछ नाजिल किया है हमने अपने नबी के ऊपर वो बिल्कुल वाज़ है, क्लियर कट है और ओपन है। और इसको रद्द और कुफर इनका सिर्फ वही लोग करेंगे जो फासिक होंगे, हद से बड़े हुए जो हैं, गुनाहगार लोग, जो अपने आप को एक साफ ज़िंदगी के अंदर कैद नहीं करना चाहते, पाक ज़िंदगी के अंदर कैद नहीं करना चाहते, वही इधर उधर के बहाने मार मूर के शरीयत के अहकामात से इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, फरार का रास्ता अख्तियार करेंगे। और इनका हाल ये है कि इन्होंने जब कभी भी कोई वादा किया था तो इन्होंने तो हमेशा उस वादे को परे फेंका था। इनमें से अक्सर जो हैं वो मोमिन नहीं हैं, ईमान लाने वाले नहीं है इनमें से। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।